आखिरी मजमून है अब इस सबक का, वो भी बड़ा अहम है। आयत नंबर 180। वला यहसबन अल्लज़ी नयबखलू नबीमा आताहुमुल्लाहु मिन फदलिही हुवा खैरल्लहुम। और ना ख्याल करें वो लोग जो बुखल कर रहे हैं उस माल में जो अल्लाह ने इनको दिया है अपने फजल में से, कि ये बुखल इनके हक में बेहतर है। नहीं, बल हुआ शरुल्लाहुम, बल्कि ये इनके हक में बहुत बुरा है। क्या होगा इस माल के साथ? सयुतवकून मा बखिलू बिही यौमल कियामा। इसी माल के तौक बनाकर इनकी गर्दनों में पहनाए जाएंगे जिसमें उन्होंने बुखल किया था कियामत के दिन। और अल्लाह को तुम्हारे माल की बिल्कुल जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द, और आसमानो जमीन की वरासत बिलाखिर अल्लाह ही के लिए है। आज तुम्हारे पास माल है, कल किसी और के पास होगा। खुद अपने हाथों से सारा दिन माल दूसरों को देते हो, तभी तो चीजें खरीदते हो। माल कोई काम की चीज होती तो कोई किसी को एक डॉलर ना देता। तो ये तो दुनिया में इधर से उधर होता रहता है। वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, अल्लाह ताला जो कुछ तुम कर रहे हो इससे खूब बाखबर है। यहां से, और अगली चंद आयतें जो भी हम इसके बाद पढ़ते हैं, यहां से अल्लाह के रास्ते में खर्च की फिर बात आ गई। बुखल क्या है? बुखल कहते हैं उस चीज को रोक लेना जिसका अदा करना लाजिम हो। लाइबिलिटीज होती है ना इंसान के ऊपर, वो अदा ना करना। मसलन ज़कात है, ज़कात ना देना बहाने बहाने से, ये तो गोल्ड पहनते हैं इसलिए ज़कात नहीं है इस पे, और ये तो बेटी की शादी की नियत से रखा हुआ है तो ज़कात कोई नहीं, और उसका तो भी नसाब ही नहीं पूरा हुआ तो ये और वो। मुनाफिकों के तस्करे में आप देखेंगे अमूमन आखिर में माल की बात आ जाती है। यहां भी बिल्कुल ये अंदाजा, अब बिल्कुल हम तकमील पे पहुंच रहे हैं गज़वे उहद के तबसरे के। मैदाने जंगों में हो या अल्लाह के दीन के किसी काम में हो, माल की तो जरूरत पड़ती है। ऐसे वक्तों में वो लोग जो माल को बचा के रख लेते हैं वो बड़े खुश होते हैं, कहते हैं देखा शुक्र हम जज्बाती नहीं हुए, देखो हम बातों में नहीं आए, और अभी क्या पता, और अभी क्या पता। अल्लाह कहते हैं तुम अपना माल अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा माल। ये माल कब तक अपने पास रखो? सिर्फ दुनिया में नहीं, कब्र में भी साथ जाएगा। बस एक फर्क पड़ जाएगा, और वो क्या? सयुतवकूनमा बखिलू बिही यौमिल क़ियामा। हदीस में आता है कि वो माल जिसके ऊपर से ज़कात अदा ना की जाए, क़ियामत के दिन अल्लाह ताला उस माल को ढालेगा एक सांप की शक्ल में। आप सोचे ना, सारा सोना पिघला कर उसका एक कोबरा सांप बन जाए, और वो सांप उसके गले में यूं जैसे स्कार्फ टाइप कोई भी आप देखे ना मफलर लपेटा जाता है, वो सांप उसके गले में एक तौक की तरह पहनाया जाएगा। और बाज़ रिवायतों में आता है कि वो गंजा सांप होगा, इतना ज्यादा जहरीला होगा कि उसके जहर से उसके अपने सर के बाल उतर चुके हैं, और वो उस बंदे के मुंह को खोलेगा, बाछे जैसे जबड़े खोलेगा और उसको डसेगा और कहेगा अना कंजुक, अना कंजुक, मैं तेरा कंस हूं। जिस चीज को वहां कंस कहा गया वही यहाँ बात है। जब खलून खास तौर पे यहाँ उस माल की बात है जिस पे ज़कात नहीं दी जाती, या उसको उस वक्त रोक लिया जाता है जिस वक्त अल्लाह के दीन को जरूरत होती है। आज आप देखिए कि अमूमन हम बखील किसको कहते हैं हमारे कल्चर में, जो अपनी जात पे ना लगाए। हाय कितने बखील हैं, देखो शादी के मौके पे भी नहीं खर्च किए, ये देखो बहू का जोड़ा बुटीक की बजाय ये जामा मार्केट से ले आए, बखील है। आजकल ये बुखल है ना, अपने पैसे हैं फिर भी इनका हाथ रुका है, देखो टूटी हुई गाड़ी में फिरते हैं, देखो घर ले सकते हैं नहीं लेते। हम तो बुखल उसको कहते हैं ना, अल्लाह उस रोक को कहता है जो बंदा अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से रुक जाए। कितने लोग हैं जो बखील हैं और कितने हैं जो सखी हैं, इसी को शुख भी कहा गया एक जगह, आगे हम पढ़ेंगे। तो याद रखिए कि ये माल नेमत है अगर हमारी ज़रूरतों पे लगे, और उसके बाद अल्लाह के दीन की ज़रूरतों पे लगे। जहाँ ज़रूरत पहले पड़ गई वहाँ पहले चला जाए। सिर्फ अल्लाह के रास्ते में देना और खुद कंगाल होना ये भी दुरुस्त नहीं है, ये भी नोट कीजिएगा। बंदे के हाथ में ज़रूर कुछ पैसा होना चाहिए, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं ना मरना जीना, होना चाहिए। क्योंकि हदीस में आता है कि बेहतरीन सदका वो है कि जिसके बाद तू भी गनी रहे। मतलब आप सारे मोटे कपड़े दे दें किसी को, तो सुबह स्कूल आने से पहले आप अब सोचेंगे कि मैं क्या पहनूं, ऐसे जाऊंगी बगैर जैकेट के तो बीमार हो जाऊंगी, और अगर नहीं है तो चलो मैं किसी से बोरो करूं, पसंदीदा नहीं है। पहले अपनी जरूरत को साथ रखें, ये नहीं कि जरूरत को बढ़ा के अब कि अच्छा मैचिंग स्वेटर नहीं है तो फिर उसका ये मतलब है, हर एक को ये बातें समझ आ जाती हैं, लेकिन कम से कम अपने रास्ते में इतना जरूर हो कि जिसके बाद बंदे को दूसरों से मांगना ना पड़े, अन्ना ईगो बंदे की है। और ये कोई बुरी बात नहीं है कि इंसान ने अपने लिए दुख सुख के लिए 4 पैसे रखे हों, होने चाहिए। नुकसान कहाँ होता है जहां अपने तो 10 10 20 20 25 साल बाद तक की प्लानिंग के लिए बच्चों के लिए रखा हुआ है, लेकिन अल्लाह के रास्ते और अल्लाह के बंदे और गरीब गुरबा उनसे रोक लिया जाए। इसीलिए अब अगली आयत जरा पढ़ लें साथ ही, तो फिर हम इसको लेंगे। कुरान पाक में एक आयत नाजिल हुई थी, पीछे आप पढ़ चुके हैं सूरत अल बकरा में, मन जल्लजी युक्रिदुल्लाहु कर्दन हसना, याद है क्या किया था उसके ऊपर हजरत दाहदा ने, हजरत अल्हा ने, नाम आते हैं ना, अबू दाहदा ने क्या किया था, मन जल्लजी युक्रिदुल्लाहु कर्दन हसना को सुन के उन्होंने कहा अल्लाह के नबी अपना हाथ मुझे दे, और हाथ में आपने उस बाग की चाबी पकड़ा दी जिसमें उनका अपना घर भी था, और बीवी को और बच्चे को लेके वहां से चले गए। एक असर तो था अबू दहदा पे उस आयत का, एक और असर अब हम पढ़ते हैं आयत नंबर 181 में। जब आयत नाजिल हुई तो उसके जवाब में एक यहूदी शख्स ने क्या कहा, आइए देखते हैं। लकद समे अल्लाह कौलल्लज़ीना कालू, अल्लाह ने सुन लिया है कॉल इन लोगों का जिन्होंने कहा, क्या कहा, अब कहते हुए भी डर लग रहा है लेकिन कुरान की आयत है, इन अल्लाह फकीरुन व नहनु अग्निया, नऊज़ु बिल्ला सुम्मा नऊज़ु बिल्ला, कि अल्लाह तो फकीर हो गया और हम गनी हैं, कि देखो अल्लाह गरीब है तभी तो हमसे माल मांग रहा है, अगर अल्लाह अमीर होता तो हमसे तो माल ना मांगता। अच्छा फिर क्या हुआ, सनक्तुबु मा कालू, हम लिख रखेंगे जो कुछ उन्होंने कहा, यानी उसने तो एक दफा बोला ना, हमने लिख लिया, और लिखी हुई बात सनद होती है। सिर्फ इनका ये कौल ही नहीं लिखा यहूद का, बल्कि वक़त लहुमुल अंबिया बिगैरि हक, हमने ये भी लिखा हुआ है कि इन्होंने नबियों को नाहक कत्ल किया था, इसको भी लिख के रख दिया। व नकूलु ज़ूक अज़ाबल हरीक, और हम कहेंगे कि अब चखो मजा इस जला देने वाली आग के अजाब का, क्या आयत 182, ज़ालिक बिमा क़द्दमत अयदीकुम, ये सब कुछ तुम्हारे अपने ही हाथों ने आगे भेजा है, यानी ये सब कुछ जो तुम्हारे साथ हो रहा है जहन्नुम की आग में भेजे जाने के बाद, ये कोई नई चीज नहीं, ये तुम्हारे अपने अमाल की कमाई है, क्योंकि वअन्नल्लाहा लैसा बिज़ल्लामिन लिल्अबीद, अल्लाह तो अपने बंदों के हक में जालिम नहीं है। ये है वो चीज जिसके बारे में यहां बात होती है कि अल्लाह ताला ने जब यह आयत नाजिल कर दी तो उसके जवाब में मुनाफिकीन और यहूद में से कुछ लोग ने ये बातें मजाक में कहनी शुरू कर दी, यानी अल्लाह के नाम को भी मजाक बना लिया कि नऊज़ बिल्ला, अल्लाह तो गरीब हो गया तभी तो हमसे मांग रहा है। ये जरूरत एकदम नहीं होती, इसके पीछे एक लंबी कहानी होती है, इसी का तस्करा इधर है। देखिए पूरे सबक को पढ़ाते हुए दिल बोझल हो गया, निफाक निफाक निफाक, सहाबा के वाक़यात पढ़ते हैं तो दिल खुलता है और निफाक के पढ़ते हैं तो दिल घुटता है, कि जब बंदा अल्लाह के दीन के मामले में संजीदा नहीं होता ना, तो एक वक्त ये भी आता है कि वो अल्लाह की ज़ात पे भी बातें करता है। एक मुनाफिक था, उसने ये कौल कहा, पिनहास नाम आता है गालिबन उसका किताबों में, जब उसने ये बात कही कि अल्लाह फकीर हो गया है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उसको थप्पड़ मार दिया, क्योंकि तौहीन कर रहा था वो अल्लाह ताला की। अबू बकर के उस थप्पड़ को उसने इतना बड़ा शोशा बनाया कि नबी सल्लम के पास आ गया, देखे देखे आपके दोस्त ने मेरी बेइज्जती की, मुझे थ्रेट किया, प्रेशराइज किया, जो भी कह लीजिए। अब नबी सल्लम को भी लगा कि अबू बकर ने ये क्या जज्बातियत कर दी, बुला लिया, अबू बकर जी आपने क्या किया, अल्लाह के नबी, इसने अल्लाह को फकीर कहा। अच्छा बाबी तुमने कहा था, कहा मैंने तो नहीं कहा, सोचिए मुकर गया कि मैंने तो कुछ नहीं कहा। अब अबू बकर के पास कोई गवाह नहीं था, तो अल्लाह ने आयत भेज दी, लकद समे अल्लाह, अल्लाह सुनता है, तुम सिद्दीक बन के तो देखो, तुम्हारी गवाही अल्लाह दिलवाएगा, लोग ना दें गवाही, मत सच्चे बना करो, मत रो रो के धो धो के हाय प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं। लकद समे अल्लाह कौल लजीना कालू, अल्लाह हर एक का कौल सुनता है, जुबान से जो बात निकाले 100 दफा सोचे, क्योंकि अल्लाह लिख लेता है। सांस भी हम लेते हैं ना ज्यादा तेज माइक के कभी करीब, तो रिकॉर्डर में उसकी भी आवाज आ जाती है। कहाँ अल्लाह की जात जो सारी चीजों को काबू करती है। इस तरह की बातें करके लोग दिल के अंदर जो उनके बुग़्ज़ था ना, उसकी बात खोलते थे। आज भी आप देखिए कि बास लोग ना समझी में और बास जहालत में इस तरह की बातें करते हैं। ये मौलवी, इनको तो मांगना ही आता है, ये चंदा लेते हैं, ये ऐसे वो, देखिए आपने देना है ना तो दे दें, नहीं देना तो चुप रहे, 100 बातों की एक बात। क्योंकि बास दफा इंसान करके भी कोई काम नेकी नहीं पाता, नीयत खराब हो, और बास दफा इसका ऑपोजिट भी है, ना दे सके तो भी दे दिया, फिर भी अजर पा लिया, जुरत से भरे। और बाज दफा सुना हुआ है कि बाज दफा ड्रामों में, स्टेज ड्रामों में भी जन्नत का मजाक, जहन्नम का मजाक, अल्लाह का मजाक, नौजबिल्ला लोग अल्लाह के बारे में इतनी अजीबो गरीब बातें करते हैं, तो मत कीजिए और सच्चे बन जाइए, फिर आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपको कितना फायदा देते हैं। फिर इसके बाद आखिरी बात जो आज के सबक में है, जिससे यहूद का वो हमें अमल दिखता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो मानी कोई नहीं, आपने इस्लाम की दावत दी नहीं माने, और जो भी बातें हम पीछे कब से पढ़ते आ रहे हैं नहीं बताई, लेकिन अपने दौर के नबियों के साथ उनका क्या मामला था, इसको समझेंगे हम आयत नंबर 183 से 185 में। अल्लज़ी नकालू, जिन लोगों ने कहा, लिख लीजिए यहूद, इन्नल्लाह अहद इलैना, बेशक अल्लाह ने हमसे एक अहद लिया है। क्या लिए? ये झूठ बोल रहे हैं यहूद अल्लाह के ऊपर। क्या कहते थे? अल्लाह नूमिन अली रसूलिन, हम हरगिज नहीं मान लाए किसी रसूल पर, हत्तयातीना बिकुर्बानिन ताकुलुहुन्नार, जब तक कि वो ऐसी कुर्बानी पेश ना करे जिसे आग खा जाए। बात बाजे, यहूद को जब कहा जाता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ, तो कहते थे नो 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 सॉरी वी कैंट। भाई क्यों नहीं? क्योंकि अल्लाह ने तौरात में हमसे ये वादा लिया कि सिर्फ उस रसूल को मानना जिसकी कुर्बानी को आग ले जाए। यहाँ समझ लीजिए, इब्तदाई दौर था जब इंसानियत का, यहूदियत का मजहब था, तो आप ये कह रहे कि जैसे इंसानियत अपने अहदे तिफल में थी, बचपने में थी, तो कुछ ऐसी आदत होती थी जो बच्चों की आदत है। मसलन जब कोई शख्स कुर्बानी करता, सदका देता अल्लाह के रास्ते में, तो जानवर को काट के ना खुले मैदान में छोड़ाता था, जिसकी कुर्बानी को आसमान से आग लाकर भस्म कर देती तो कुर्बानी कबूल हो जाती, और जिसकी वहां पड़ी गलती सड़ती रहती तो लोगों को पता चल जाता कि इसकी कबूल नहीं हुई। सूरत मायदा आयत 27 में हम हाबील और काबिल के वाक्य में भी ये बात पढ़ेंगे कि इस करबा कुर्बान फतुकबिल मिना हदीहिमा वलम युतकबल मिन अल आखर। अच्छा, अब होता क्या था कि जब कुर्बानी कबूल हो जाती थी तो सबको पता चल जाता था, वाह वाह हो जाती थी। अल्लाह ने उम्मत मुस्लिमा के ऊपर एक फजल किया, हमारे बोल छुपा दिए, वरना तो आप सोचिए ईद उल अदहा के बाद कितना ताफुन होता आज के दौर में दुनिया में, जो सिर्फ ये कहते हैं कोई बात नहीं, जो भी कमाते हो कोई बात नहीं, इसमें से सदके कर देना, कितने हज कबूल ना होते। तो इन लोगों ने ये बात एक बहाना बना ली कि भाई अल्लाह के नबी को हम जरूर मानते हैं, अगर इनकी कुर्बानी को आसमान से आग ले जाए तो अल्लाह ताला इसका जवाब इनसे पूछते हैं, कुल ए नबी, इनसे कहिए ठीक है ना मानो मुझे, मेरे साथ तो ऐसा मामला हो नहीं रहा, ना मानो, लेकिन ये तो बताओ, कद जाकुम रुसुलुम मिन कब्लि बिल बय्यिनात, तुम्हारे पास तो मुझसे पहले बहुत सारे रसूल आ चुके थे वाज़े मोजज़ात के साथ, व बिल्लज़ी कुलतुम, और वो चीज़ भी ले आए जो तुम कह रहे हो। क्या है बिल्लज़ी? लिख लीजिए अल्लज़ी, यही ताकुलुन्नार, कि ये आग के खाने वाला मामला भी उन रसूलों के साथ होता था, तो फलीमा कतल तुमुहुम इन कुंतुम सादिकीन, फिर तुम उनको क्यों कत्ल करते थे अगर अपने इस दावे में सच्चे हो। बात वैसे हुई, कि नबी को तो इसलिए नहीं मान रहे कि इनकी कुर्बानी को आग नहीं खाती, तो तुम्हारे तो वो रसूल आए जिनके साथ ये सारा मामला भी हुआ, तुमने फिर उनको कत्ल कर दिया। असल बात क्या है कि तुम मानना ही नहीं चाहते। आयत 184, फाइन कज़बू का। फिर ए नबी, अगर ये आपको झुटला दे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, ये मामला सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ। फकत कुछ सी बरसलुम मिन कबलिक, तो आपसे पहले भी बहुत से रसूलों को झुटलाया जा चुका। जाओ बिल बैनात, जो इनके पास वाज़े निशानियां लेकर आए, वज़ ज़ुबुर और सहीफे, वल किताब बिल मुनीर और रोशन किताब लेकर आए। तो सवाल पैदा होता है कि इनको ये खरमस्तियां सूझती क्यों है कि नबी ये करे तो मानेंगे, ये हो तो माने। इसलिए कि इनको दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत भूली हुई है, और वो क्या है? आखिरी आयत सबक की, आयत 185, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत, हर जी नफ्स को मौत का मजा चखना है। अगर आप इस लफ्ज को देखें ना, नफ्स के बाद ज़ाइका, ज़ाइका फाइला का वजन है, हर नफ्स चखने वाली है, ये मतलब है। अगर आप इसको बहुत ठेठ उर्दू में ले जाएं, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। वइन्नमा तुवफ्फौन उजूरकुम यौमल क़ियामा, और तुमको तुम्हारे आमाल का पूरा पूरा बदला तो क़ियामत ही के दिन दे दिया जाएगा। कैसे? फमन ज़ुख्ज़िहानिन नारी वउद्ख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। बड़ा अहम नुक्ता ये। तो जो कोई बचा लिया गया जहन्नुम से और दाखिल कर दिया गया जन्नत में, तो वो तो कामयाब है। क्योंकि वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की जिंदगी तो इसके सिवा कुछ नहीं कि सिर्फ धोखे का सामान है। क्या पता चला कि जिसको मौत याद है वो जुबान से इतनी गुस्ताखियां नहीं कर सकता। देखिए, अल्लाह ताला ने हम सबको बोलने की ताकत दी है ना, लेकिन बहुत जबरदस्त किस्म का इम्तिहान है, क्या बोलते हो, कैसे बोलते हो। ये भी हो सकता था हम झूठ बोले तो हमारी जुबान कट जाए, हम गीबत करें तो जुबान दांतों के नीचे आ जाए, लेकिन अल्लाह ने कहा खूब बोलो, खूब लच्छेदार बातें करो, लोगों को खुश करो, हंसो हंसाओ, अल्लाह पे बातें, दीन पे बातें, मौलवियों पे बातें, लेकिन याद रखो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत, मौत ने जब अपने पंजे गाड़ने हैं लग बता जाएगा। फिर तुम देखोगे कि तुम दुनिया में हक के मुकाबले में कितनी हुज्जतें करते थे। चले, हमें बात वैसे नहीं समझ आती, ठीक है, आज तो वो मामले नहीं है कि नबी आए और उसको लोग माने, कुरान की दावत पे लोगों का क्या रिस्पॉन्स होता है? ऐसे लगता है रो ही पड़ेंगे। दुनिया में इनसे ज्यादा कोई मजबूरी नहीं है। लंबी फहरिस्त, आप उनका एक उजर दूर करें तो दूसरा तैयार। आप कहते राइट मैं दे दूंगी, तो कहेंगे बच्चे ले आइए, बच्चों को भी, बच्चे ले आए तो मियाँ साहब। यानी वही बात है कि कारे जहां दराज है अब मेरा इंतजार कर। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ईमान की हलावत दे दे, मिठास, ईमान की मिठास जिसको मिल गई उसके लिए हक को कबूल करना बहुत आसान है। और जिसको ये यकीन आ गया ना कि अल्लाह मेरी सुनता है, समय अल्लाह, जो बात मैं करती हूँ सुनता है। अब देखिए, हम नमाज में पढ़ते हैं ना, समय अल्लाहु लिमन हमीदा, कभी शऊर से देखें तो कौन कह रहा है? तुमने अभी ये सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदी का व तबारक अस्मुका का समय अल्लाहु लिमन हमीदा। लिमन कौन है? मैं हूँ नमाजी, मुसल्ली, कि तुमने अभी इस जाय नमाज पे आके जो अल्लाह की हम्द की, अल्लाह ने सुन ली है। कब इस एहसास के साथ सजदे में जाते हैं रुकू से उठते हुए? दिल कहीं, दिमाग कहीं, बात कहीं, बस कभी कभी बात करते हैं तो बातों की। और आप देखिए कि उनका जुमला इतना बुरा था कि अल्लाह ने एज इट इज लिख दिया, दोहराना भी नहीं चाहा, कौल अल्लज़ीना कालू। तो हम कैसे अपने ऊपर फख्र कर सकते हैं? बहुत जरूरत है अदब सीखने की, बात करने का सलीका, अल्लाह के साथ अदब, नबियों के साथ अदब, दीनदारों के साथ, हर बंदे को उसकी जगह पे रखें, किसी रिश्ते में बदतमीजी पे ना आए, बद तहजीबी पे ना, अपने बच्चों के साथ भी बदतमीजी ना करें। वरना आप देखिए ये जरूरत इतनी बढ़ती है कि बंदा अल्लाह ताला पे भी बातें करता है। आज का यही सबक था। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ